ये आकाशवाणी दिल्ली है। दिल्ली मेट्रो ने यात्रियों की सुविधा के लिए नई दिल्ली और शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशनों पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ान चेक इन सुविधा शुरू करने की घोषणा की है। दिल्ली नगर निगम के विद्यालयों में 3 से 10 वर्ष के बच्चों के लिए दाखिले की प्रक्रिया शुरू हुई। दिल्ली में बिजली बिलों में बढ़ोतरी के खिलाफ कांग्रेस ने 50 से अधिक स्थानों पर विरोध प्रदर्शन किया। हरियाणा सरकार ने पुलिस, खनन, जेल विभागों में कुछ पदों पर भर्ती में अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने का फैसला किया। राष्ट्रीय राजधानी में दिल्ली मराठी प्रतिष्ठान ने महाराष्ट्र की लोकप्रिय पंढरपुर वारी भगवान विट्ठल की शोभा यात्रा का आयोजन किया। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। दिल्ली मेट्रो रेल निगम DMRC ने यात्रियों की सुविधा के लिए मेट्रो स्टेशन पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ान चेक इन सुविधाएं शुरू करने की घोषणा की है। ये सुविधा एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर नई दिल्ली और शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशनों पर उपलब्ध है। इस सुविधा के तहत यात्री इन मेट्रो स्टेशनों पर अपने सामान की जांच करा सकते हैं। इसके बाद उनके सामान को सुरक्षित विमान तक पहुंचा दिया जाएगा। DMRC ने बताया कि ये सुविधा एयर इंडिया के यात्रियों के लिए प्रतिदिन सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक और विस्तारा एयरलाइंस के यात्रियों के लिए सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक उपलब्ध रहेगी। घरेलू उड़ानों के लिए यात्री 12 घंटे से लेकर 2 घंटे पहले तक और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए 4 घंटे से 3 घंटे पहले तक अपना चेक इन पूरा कर सकते हैं। दिल्ली नगर निगम के विद्यालयों में 3 से 10 वर्ष के बच्चों के लिए दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नगर निगम ने एक वीडियो संदेश में बताया कि इन विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के देने के साथ साथ बच्चों को कई तरह की निःशुल्क सुविधाएं भी मुहैया कराई जाती हैं। बच्चों को शिक्षा से संबंधित सामग्री जैसे स्कूल की वर्दी, किताबें, भोजन के साथ साथ चिकित्सा जांच की निःशुल्क सुविधा भी दी जाती है। इसके अलावा निगम के प्रत्येक विद्यालय में दिव्यांग छात्रों के लिए विशेष शिक्षक भी नियुक्त किए गए हैं। इस वर्ष निगम के करीब 150 छात्रों ने जवाहर नवोदय विद्यालय, 11 छात्रों ने विद्या ज्ञान विद्यालय और 50 से ज्यादा छात्रों ने सैनिक स्कूल की प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण की है। युवा कार्य और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि देश का युवा भविष्य की नीति निर्माता हैं। उन्होंने कहा कि सरकार विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं के सशक्तिकरण के प्रतिबद्ध है। केंद्रीय मंत्री ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय युवा और राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार विजेताओं से संवाद किया। डॉ मांडविया ने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि युवाओं की बदलाव लाने की क्षमता से देश प्रगति और नवाचार की ओर अग्रसर होगा। कार्यक्रम का उद्देश्य पुरस्कार विजेताओं की उपलब्धियों का जश्न मनाना और मेरा युवा भारत मंच को और अधिक उपयोगी बनाने पर चर्चा करना था। युवा कार्य और खेल मंत्रालय के अनुसार चर्चा का महत्वपूर्ण हिस्सा मेरा युवा भारत मंच युवाओं के रचनात्मक जुड़ाव के लिए नवीन और सहयोगात्मक विचारों पर केंद्रित था। डॉ मांडविया ने पुरस्कार विजेताओं से मंच को और अधिक संवादपरक बनाने के बारे में सुझाव आमंत्रित किए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने देश की फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड की प्रतिष्ठा के अनुरूप एक विश्व स्तरीय दवा नियामक ढांचा बनाने पर जोर दिया है। उन्होंने उत्पादों की उच्चतम गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए दवा और चिकित्सक उपकरण उद्योग के साथ निरंतर बातचीत पर भी बल दिया। एक रिपोर्ट।
स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आज दवा, सौंदर्य प्रसाधन और चिकित्सा उपकरणों के विनियमन पर एक समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि दवाओं के उत्पादक और निर्यातक के रूप में देश वैश्विक स्तर पर आगे है। इसके अनुरूप ही उन्होंने केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन से वैश्विक मानकों को प्राप्त करने के लिए समय सीमा के साथ एक रोड मैप तैयार करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि निर्यात की जाने वाली दवाओं की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए उचित प्रणाली तैयार की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि दवा नियामक संस्था और उद्योग को पारदर्शिता के उच्चतम सिद्धांतों पर काम करना चाहिए, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि देश में निर्मित और बेचे जाने वाले उत्पाद वैश्विक गुणवत्ता मानकों के उच्चतम सूचकांकों को पूरा करे। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की समस्या पर स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकारियों और हितधारकों से कहा कि वे उनकी समस्याओं को समझकर उनकी क्षमता और उत्पादों की गुणवत्ता को मजबूत करने के लिए उनका समर्थन करें। प्रादेशिक समाचार के लिए भूपेंद्र सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने सुलभ और किफायती स्वास्थ्य देखभाल के लिए नवीनतम तकनीकों के उपयोग पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी से स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में क्रांति आ रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग टूल के साथ उपयोग से दक्षता में वृद्धि और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हो सकता है। आज नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश विश्व के शीर्ष 6 जैव निर्माताओं में से एक है और किफायती स्वास्थ्य देखभाल का केंद्र बन गया है। उन्होंने कहा कि चिकित्सा, पर्यटन और स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में भारत सबसे अधिक मांग वाला गंतव्य देश बन गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी दिल्ली है। राजधानी में बिजली बिलों में बढ़ोतरी के खिलाफ आज कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली के 50 से अधिक जगहों पर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी बिजली कंपनियों को अंदरूनी फायदा पहुंचाने के लिए हर वर्ष 9-10% की बढ़ोतरी पीपीएसी के नाम पर कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने इन बिजली दरों में बढ़ोतरी के पीछे केजरीवाल सरकार और भाजपा की साजिश बताई। श्री यादव ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने सत्ता में आने के लिए दिल्लीवासियों से बहुत से वादे किए, लेकिन ये वादे पूरे नहीं हुए।
आम आदमी पार्टी ये एक वादा करके आए थे कि बिजली के बिल हाफ कर देंगे। आज 10 साल के बाद साफ दिखता है कि जो हाफ होने चाहिए थे वो ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं, क्योंकि आज अगर एवरेज बिलिंग रेट का देखें तो जो पहले माननीय शीला दीक्षित जी के समय 2013 की सरकार थी उस समय 4.80 टू बी प्रिसाइज हमारा होता था, आज वही ABR जो है वो 10 रूपये प्रति यूनिट का हो गया है। ये सरकार वादे बहुत किए लेकिन किसी भी वादे पर पूरा नहीं उतरे।
राजधानी में औद्योगिक क्षेत्रों के विकास और रखरखाव को लेकर दिल्ली सरकार में उद्योग मंत्री सौरभ भारद्वाज ने आज फैक्ट्री मालिकों से मुलाकात की। इस दौरान सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली सरकार 27 औद्योगिक क्षेत्रों के विकास और रखरखाव को लेकर बेहद गंभीर है और इन क्षेत्रों के विकास के लिए एक योजना लेकर आई है। इसके तहत औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में होने वाले खर्च का 90% हिस्सा दिल्ली सरकार खर्च कर रही है और 10% हिस्सा फैक्ट्री मालिक वहन कर रहे हैं। इस दौरान व्यापारियों ने सौरभ भारद्वाज से अनुरोध किया कि दिल्ली नगर निगम द्वारा नक्शे पास किए जाने के लिए फीस को कम किया जाए। व्यापारियों को इस मांग पर मंत्री सौरभ भारद्वाज ने सहमति जताते हुए अधिकारियों से योजना के अनुसार ही फीस लेने की बात कही। हरियाणा सरकार ने पुलिस, खनन और जेल विभागों में कुछ पदों पर भर्ती में अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज चंडीगढ़ में इसकी घोषणा करते हुए कहा कि राज्य में कांस्टेबल, खनन रक्षक, वन रक्षक, जेल वार्डन और विशेष पुलिस अधिकारी SPO के पदों पर सीधी भर्ती में अग्निवीरों को 10% आरक्षण दिया जाएगा।
अग्निवीरों को ग्रुप बी और सी में सरकारी पदों के लिए निर्धारित अधिकतम आयु 3 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी, परंतु अग्निवीरों के पहले बैच के मामले में आयु में यह छूट 5 वर्ष की होगी। सरकार ग्रुप सी में सिविल पदों पर सीधी भर्ती में अग्निवीरों के लिए 5% हॉरिजेंटल आरक्षण और ग्रुप बी में 1% हॉरिजेंटल आरक्षण प्रदान करेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी विभागों, बोर्ड और निगमों में तैनाती के इच्छुक अग्निवीरों को मैट्रिक स्कोर में प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अग्निवीरों को 30,000 रूपये प्रतिमाह से अधिक वेतन देने वाली औद्योगिक इकाइयों को राज्य सरकार 60,000 रूपये की वार्षिक सब्सिडी देगी। श्री सैनी ने कहा कि स्वयं का उद्यम स्थापित करने वाले अग्निवीरों को 5,00,000 रूपये तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अग्निवीरों को भी प्राथमिकता के आधार पर शस्त्र लाइसेंस दिया जाएगा। अगर कोई अग्निवीर दुर्घटनाग्रस्त होता है तो भारत सरकार की सड़क परिवहन राजमार्ग योजना के अंतर्गत मुआवजा और निःशुल्क उपचार की सुविधा दी जाएगी। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ ने पिछले 7 वर्षों के दौरान नन्हे फरिश्ते ऑपरेशन के तहत 84,000 से अधिक बच्चों को बचाया है। रेल मंत्रालय के अनुसार नन्हे फरिश्ते विभिन्न भारतीय रेलवे जोन में देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों को बचाने के लिए समर्पित एक मिशन है। मंत्रालय ने कहा कि बचाए गए बच्चों को जिला बाल कल्याण समिति को सौंप दिया जाता है, जो बच्चे को माता पिता या अभिभावक को सौंप देती है। बचाए गए बच्चों में घर से भागे हुए, लापता, बेसहारा, अपहृत, मानसिक रूप से विकलांग और सड़क पर रहने वाले बच्चे थे। मंत्रालय ने कहा कि इस वर्ष मई तक आरपीएफ ने 4,607 बच्चों को बचाया, जबकि पिछले साल 11,794 बच्चों को बचाया गया था। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। राष्ट्रीय राजधानी में आज दिल्ली मराठी प्रतिष्ठान ने महाराष्ट्र की लोकप्रिय पंढरपुर वारी भगवान विट्ठल की शोभा यात्रा का आयोजन किया। ये शोभा यात्रा कनॉट प्लेस के प्राचीन हनुमान मंदिर से प्रारंभ होकर आरकेपुरम सेक्टर 6 स्थित भगवान विट्ठल को समर्पित मंदिर में संपूर्ण हुई। शोभा यात्रा में पूर्व राज्यसभा सांसद विनय सहस्रबुद्धे, दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, लोकसभा सांसद मनोज तिवारी और बांसुरी स्वराज समेत कई लोग सम्मिलित हुए और भगवान विट्ठल का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर श्री सचदेवा ने कहा कि वारकरी यात्रा भारत की समृद्ध परंपराओं की प्रतीक है, जो समानता और सद्भाव का संदेश देती है। उन्होंने कहा कि इसी पंढरपुर यात्रा ने देश के स्वतंत्रता आंदोलन को भी मजबूत करने में बड़ा योगदान दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आषाढ़ एकादशी के अवसर पर लोगों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कामना की कि भगवान विट्ठल की कृपा से समाज में खुशी और समृद्धि बनी रहे। कांवड़ यात्रा को सुगम सुरक्षित बनाने के लिए फरीदाबाद के जिला उपायुक्त विक्रम सिंह ने आज अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री सिंह ने 22 जुलाई से 2 अगस्त तक चलने वाली कांवड़ यात्रा के दौरान ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 2 दिल्ली मथुरा रोड और बाईपास रोड पर उचित व्यवस्था करने के दिशा निर्देश दिये। बैठक के दौरान उपायुक्त ने संबंधी थाना प्रभारी से कहा कि तेज रफ्तार वाली ट्रैफिक की जगहों पर बैरिकेड लगाए जाएं। उपायुक्त ने कहा कि आगरा कैनाल और बाईपास रोड से कांवड़ियों का आवागमन ज्यादा होता है, इसलिए संबंधित विभागों के अधिकारी अपने अपने क्षेत्र में उस सड़क की मरम्मत कराना सुनिश्चित करें, जिससे कांवड़ियों को परेशानी का सामना न करना पड़े। उपायुक्त विक्रम सिंह ने कहा कि कांवड़ शिविर में उचित प्रकाश का प्रबंध, साफ सफाई, शिविरों में स्वच्छता के साथ ही सीसीटीवी कैमरे का भी प्रबंध होना चाहिए। इसके अलावा कांवड़ियों के स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए चिन्हित स्थानों पर एम्बुलेंस की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए हैं। आज मुहर्रम है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन की शहादत का प्रतीक है। उन्होंने कर्बला में सच्चाई के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। इस अवसर पर ताजिया जुलूस निकाले जा रहे हैं। पेरिस ओलंपिक में भारत के 117 खिलाड़ी भाग लेंगे। खेल मंत्रालय ने इसके अलावा सहयोगी स्टाफ के 140 सदस्यों को भी मंजूरी दी है, जिसमें खेल अधिकारी भी शामिल हैं। राजधानी के कुछ हिस्सों में आज सुबह हल्की बूंदाबांदी हुई तो वहीं कुछ क्षेत्रों में तेज बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री अधिक 37 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में आमतौर पर बादल छाये रहने और कुछ इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली मेट्रो ने यात्रियों की सुविधा के लिए नई दिल्ली और शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशनों पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ान चेक इन सुविधा शुरू करने की घोषणा की है। दिल्ली नगर निगम के विद्यालयों में 3 से 10 वर्ष के बच्चों के लिए दाखिले की प्रक्रिया शुरू हुई। दिल्ली में बिजली बिलों में बढ़ोतरी के खिलाफ कांग्रेस ने 50 से अधिक स्थानों पर विरोध प्रदर्शन किया। हरियाणा सरकार ने पुलिस, खनन और जेल विभागों में कुछ पदों पर भर्ती में अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने का फैसला किया। राष्ट्रीय राजधानी में दिल्ली मराठी प्रतिष्ठान ने महाराष्ट्र की लोकप्रिय पंढरपुर वारी भगवान विट्ठल की शोभा यात्रा का आयोजन किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।